बूढ़ी माँ ने तिलस्मी रोटी तारापरी को देने के लिए एक शर्त रखी थी, 300 आत्माओं की मुक्ति करानी होगी। ये सुनकर तारापरी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आत्माओं की मुक्ति करा सकती है। तारापरी ने बूढ़ी माँ से कहा, लेकिन बूढ़ी माँ, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी की शक्तियों के द्वारा तुम अब सभी आत्माओं को देख सकती हो। न केवल देख सकती हो, बल्कि उनसे बातें भी कर सकती हो। मेरे साथ साथ उन सब की मुक्ति केवल राधा बेटी तुम्हारे हाथों में है। बूढ़ी माँ ने तारापरी को राधा कहकर पुकारा था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। तारापरी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बूढ़ी माँ की ओर देख रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर कौन है ये राधा, मुझे उसके बारे में जानना होगा। बार बार राधा का नाम क्यों मेरे सामने आ रहा है, मुझे पता लगाना होगा इस राधा के बारे में, क्योंकि ये पिछला जन्म एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार उसके सामने आया है। मुझे जानना होगा आखिर क्या है राधा मोहन की कहानी, और इतनी सारी औरतें क्यों इस तरह से अर्धजली आत्माएं बनकर घूम रही हैं, आखिर क्या माजरा है इन सबके पीछे। तारापरी ने बूढ़ी अम्मा से कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं नहीं जानती मेरे हाथों क्यों और कैसे किसी की मुक्ति लिखी हुई है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आखिर सच क्या है राधा मोहन का। तो क्या आप मुझे राधा मोहन का सच बताएंगी? तारापरी की बात सुनकर बूढ़ी माँ मंद मंद मुस्कुराने लगी थी। तो क्या आप मुझे राधा मोहन का सच बताएंगी? तारापरी की बात सुनकर बूढ़ी माँ मंद मंद मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम दोनों को तुम्हारा सच बताने के लिए ही तो मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर तारापरी और अमन एक दूसरे को देखने लगे। अमन को ये सब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वो तारापरी से कहने लगा, अब तुम क्या कहानी सुनने की बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है हमें एक एक मिनट कितना भारी हो रहा है। तारापरी ने अमन से कहा, लेकिन अमन सर, बूढ़ी माँ ने साफ साफ कहा है कि जब तक हम लोग आत्माओं की मुक्ति नहीं करा देते हैं, तब तक हमें तिलस्मी रोटी नहीं मिल सकती है। अमन ने कहा, तो सीधा सीधा तुम उनसे आत्माओं को मुक्त कराने का रास्ता पूछ सकती हो, फिर जो भी वे रास्ता बताएंगे हम वही करेंगे। तारापरी ने कहा, लेकिन अमन सर, हमें ये भी तो जानना चाहिए कि आखिर ये लोग हमें जिस नाम से पुकार रहे हैं, आखिर क्या सच्चाई है इन नामों की, और इतनी सारी आत्माओं के इस तरह से भटकने का क्या कारण है। अब अमन सर, मुझे तो ये सब जानना है, आखिर क्या है ये सब, अगर आपको सुनना है तो सुने, वरना न सुने, लेकिन मैं तो जा रही हूँ बूढ़ी माँ से राधा मोहन का सच जानने के लिए। और वैसे भी अभी रात का 1 बजा है और पूरे 4 घंटे हैं हमारे पास। सुबह 5 बजे से पहले पहले हमें तिलस्मी रोटी माँ के घाव पर लगानी है, और मुझे पूरा यकीन है बूढ़ी माँ माँ को कुछ भी नहीं होने देंगी। और आपने सुना नहीं, ये सब हमारा कितनी सदियों से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इन्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे नहीं दे सकते हैं? और शायद आपको याद नहीं, एक बार जब हम लोग उस जंगल में कुछ गुंडों के बीच फंस गए थे, तब हम दोनों ने वहाँ हमारी मूर्ति देखी थी। तारापरी ने अमन को राधा मोहन का सच जानने के लिए राज़ी कर लिया था। तभी उन्हें बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ बेटी, मैं तुझे बताती हूँ सारा सच, जल्दी आओ, तुम लोगों को सूर्य निकलने से पहले पहले घर भी पहुँचना होगा। तारापरी चलने लगी। जैसे ही वो थोड़ी दूर गई, उसने पलटकर अमन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा, और अमन न चाहते हुए भी तारापरी के साथ चल दिया। उन्होंने देखा बूढ़ी माँ एक ऊँचे से टीले पर बैठी हुई थी। तारापरी अमन का हाथ पकड़कर बूढ़ी माँ के पैरों के पास बैठ गई। बूढ़ी माँ ने उन दोनों के हाथों में एक एक फल दिया और बोली, इस फल के द्वारा जो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, तुम दोनों जैसे ही आंखें बंद करोगे, तुम लोग सदियों पीछे पहुंच जाओगे और सब कुछ तुम दोनों की आंखों के सामने होगा। ये कहानी मैं सुनाऊंगी नहीं, बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी ही आंखों से दिखाऊंगी। ये सुनकर तारापरी और अमन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तारापरी और अमन ने वो फल लेते ही अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उन्हें एक बड़ा ही खूबसूरत गांव नजर आने लगा। वहां बड़े बड़े तालाब बने हुए थे और कितने सारे पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे। कहीं कुछ छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग धोती कुर्ता पहने हुए चारपाई पर बैठे हुए थे। गांव की औरतों के हाथों में पानी के बड़े बड़े मटके थे और उन्होंने घाघरा चोली पहना हुआ था। सब कुछ बेहद शांतिप्रिय सा लग रहा था। कितनी शांति थी वहां पर। अगर आज के आधुनिक जमाने के आदमी को ऐसी सुख शांति मिल जाती तो किसी के भी मन में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होती, जैसी आजकल सबके मन में रहती है। वैसे सब कुछ बेहद प्यारा और लहलहाता हुआ सा लग रहा था। तभी दूर कहीं से कितने सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। तारापरी और अमन उस ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक साथ लगातार 15-20 घुड़सवार लोग वहां आए और पानी भरने जा रही औरतों को पकड़ने लगे। तारापरी ये देखकर हैरान रह गई और उन औरतों की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। अमन भी उसके साथ उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने एक एक अलग अलग घुड़सवार को छूने की कोशिश की, उन दोनों का हाथ उन घुड़सवारों के आर पार हो गया। अमन ये देखकर अपने हाथों को देखने लगा और तारापरी भी। तभी वहां उन्हें वो बूढ़ी माँ दिखाई दी और वो उन दोनों के पास आकर बोली, बेटा तुम लोग इन औरतों को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि तुम लोग सैकड़ों वर्ष पूर्व हो और यहाँ केवल तुम्हारी आत्मा है। तुम दोनों केवल देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो। तारापरी और अमन ने एक दूसरे को देखा और फिर उन बेचारी औरतों को देखने लगे, जिन्हें वो घुड़सवार अपने अपने घोड़े पर उठाकर ले जा रहे थे। वहां कितने ही आदमी जख्मी पड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी पत्नी और बहनों को बचाने की कोशिश की थी, वे सब के सब वहां जख्मी पड़े हुए थे, और जिन औरतों के छोटे छोटे बच्चे थे वे वहां रो रहे थे। तारापरी उदास मन से ये सब देख रही थी। तभी अमन और तारापरी को लगा कि वे लोग अब दूसरे गांव में आ गए हैं। वो गांव भी बेहद खूबसूरत था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, और यहाँ पर भी कितनी सारी औरतें एक पेड़ के चक्कर लगा रही थी। शायद कोई त्योहार था वहां, कोई इसीलिए सबकी सब औरतों ने पीली साड़ी पहन रखी थी और सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। लेकिन तभी इस गांव में भी घोड़े की चाप सुनाई देने लगी और देखते ही देखते एक बार फिर 15-20 घुड़सवार हाथों में तलवार लिए वहां आ धमके। वहां आकर भी उन्होंने सभी औरतों को उठाना शुरू कर दिया और जो कोई भी उनके रास्ते में आया उन्होंने पिछले गांव की तरह उन पर भी हमला कर दिया, और यहां पर भी वे सब घुड़सवार कितनी ही औरतों को उठा कर ले गए। तारापरी और अमन ने इस बार भी कोशिश की, लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर पाए और एक दूसरे की तरफ उदासी से देखने लगे। इस बीच उन्हें एहसास हुआ कि अब वे लोग तीसरे गांव में हैं। ये गांव पिछले दो गांवों से ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ अनगिनत फूलों के बगीचे थे, जैसे अमन का बगीचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बगीचे वहां थे, और तरफ लहलहाते खेत और चारों दिशाओं से आती ठंडी ठंडी हवाएं किसी का भी मन मोह सकती थी। अमन और तारापरी को वहां पहुंचकर काफी अच्छा लग रहा था, और तारापरी का तो मन चाह रहा था कि वो उन बगीचों में जाकर कोलाहल करे। तभी वहां भी उन्हें घोड़े की चाप सुनाई देने लगी। तारापरी डर गई कि अब जरूर यहाँ भी हमला होगा और यहाँ की औरतों को भी ये गुंडे ले जाएंगे। ये सोचकर तारापरी की आंख भर आई, लेकिन उस वक्त वो एक आत्मा रूप में थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन उसका जिस्म वहां बूढ़ी माँ के पास था। उसकी जिस्म वाली आंखों में आंसू आ निकले, जिन्हें बूढ़ी माँ ने साफ कर दिया।
तारापरी और अमन ने देखा कि वहां आकर भी घुड़सवार औरतों पर हमला करने लगे, लेकिन तभी उन घुड़सवारों पर किसी ने तीरों से हमला करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ घुड़सवार वहीं गिरकर मर चुके थे और कोई अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। सभी घुड़सवारों के जाते ही गांव वालों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और सब उसे खोजने लगे कि आखिर किस बहादुर ने उन लोगों की जान बचाई थी। तभी हाथ में तीर कमान पकड़े हुए एक नकाबपोश वहां आया। सब उसे देखकर उसके पास गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। अमन और तारापरी भी सभी लोगों के बीच से निकलते हुए उस नकाबपोश के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए, क्योंकि वे उस वक्त आत्माएं थीं तो उनके लिए लोगों के अंदर से निकलना बेहद आसान था। सभी लोग उस नकाबपोश से उसका नकाब हटाने के लिए कहने लगे, और उस नकाबपोश ने पहले अपने सर पर बंधी हुई पगड़ी खोली, और पगड़ी खोलते ही उसके लंबे रेशमी बाल बाहर आ निकले। सभी लोगों में खुसुरफुसुर शुरू हो गई। अमन और तारापरी भी उस नकाबपोश के इतने लंबे घने बाल देखकर चौंक गए। तभी एक छोटी सी बच्ची आगे आई और उसने उस नकाबपोश का नकाब हटा दिया, जिसे देखकर सबके सब दंग रह गए, और तारापरी की तो हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं था, और अमन भी लगातार उस नकाबपोश को देख रहा था। वो एक नज़र तारापरी को देखता तो अगले ही पल उस नकाबपोश को, क्योंकि वो नकाबपोश हूबहू तारापरी जैसी थी, या ये कह लो कि वो तारापरी की फोटोकॉपी थी। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे ये तो तपस्वी महाराज की बेटी राधा है। सब लोग बार बार उसका नाम पुकारने लगे, राधा 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 राधा, और तारापरी को तो ऐसा लग रहा था मानो कोई सांप सूंघ गया हो।